दिन भर तारीख 15 मई दिन सोमवार, मैं हूं विनीत खरे। कुलभूषण जाधव मामले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भिड़े।
पाकिस्तान टेक ऑल मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट कुलभूषण सुधीर जाधव इज नॉट एग्जीक्यूटेड।
एज द कोर्ट कैन सी द पासपोर्ट बेयर्स अ मुस्लिम नेम।
माओवादी नेता को आत्मसमर्पण के बदले धन दिए जाने का विरोध।
टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका 15 लाख रुपया उसको जो दिया गया है मुआवजा के रूप में, ये बिल्कुल गलत है और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।
रोहतक में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या ने उठाए कई सवाल और कश्मीर में गायब लड़के ने वीडियो जारी कर किया चरमपंथी बनने का ऐलान। और आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। पाकिस्तान में कथित जासूसी के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई हो रही है। भारतीय पक्ष ने फांसी की सजा पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि जाधव को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। पाकिस्तान ने कौंसलर उपलब्ध कराने की 16 अपीलों को नजरअंदाज किया और वियना संधि का उल्लंघन किया। भारतीय पक्ष ने कहा कि जाधव को अपना पक्ष रखने के लिए कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान अपना पक्ष रख रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इस मामले में भारत का आवेदन अनावश्यक है। हेग में इस मामले की सुनवाई 11 जजों की बेंच कर रही है। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रिपब्लिकन पार्टी के एडवार फिलिप को प्रधानमंत्री नामित किया है। वो ला आवर शहर के मेयर और सांसद हैं। मैक्रों ने अपने राजनीतिक अभियान ला रिपब्लिकन एंड मार्श से किसी नेता को इस पद के लिए नहीं चुना है। माना जा रहा है कि उनका मकसद रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ लाना है। फ्रांस में अगले महीने संसदीय चुनाव होने हैं और इन चुनावों को मैक्रों के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। मर्केल का कहना है कि वो इस मुलाकात के दौरान खुलेपन से बातचीत करेंगी। मैक्रों ने कहा था कि वो यूरोपीय यूनियन में सुधार पर जोर देंगे। मर्केल ने इस मुलाकात को लेकर कहा, मैं पहले उनसे बातचीत करना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। फ्रांस के लोगों में ज़्यादा रोजगार की उम्मीद जगाना, युवाओं को ज़्यादा मौके देना इनमें शामिल है। जहाँ तक यूरोजोन की बात है तो उसे लेकर कई बरसों से कई प्रस्ताव मौजूद हैं। हाँ, मैं इस बारे में उनसे बात करूँगी। मैं कहूँगी कि हमें खुलापन दिखाना होगा जिससे हम एक साथ मिलकर लक्ष्य हासिल कर सकें, बजाय इस बात पर अटकने की कि क्या नहीं हो सकता है। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आइवरी कोस्ट में सरकार समर्थित सैनिकों और विद्रोही सैनिकों के बीच संघर्ष की खबरें हैं। सैनिक बोनस की मांग पूरी नहीं होने को लेकर नाराज हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सैन पेड्रो में गोलीबारी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्रोही हर तरफ नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विद्रोहियों ने अभियान में मुख्य सड़क को बाधित कर दिया है। देश के सभी बैंकों को बंद कर दिया गया है और कई स्कूल और दफ्तर भी बंद हैं। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 150 देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमले का असर कम हो गया है। ये हमला शुक्रवार को हुआ था। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सरकारों को इस हमले को वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस हमले के लिए रूस जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने चीन में कहा, अगर इस खतरे के स्रोत के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट के नेतृत्व ने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका की विशेष सेवा वायरस का आरंभिक स्रोत थी। रूस का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे हैरानी है कि इन परिस्थितियों के बीच भी मैं कुछ विरोधाभासी बातें सुन रहा हूँ। ये थे व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पार्टी प्रवक्ता ओ यंग हुन ने कहा कि निवर्तमान सरकार ने सिर्फ 10 पन्नों का डोजियर दिया है। पूर्व सरकार के मुखिया पार्क गुन हे को मार्च में पद से हटा दिया गया था। अब भ्रष्टाचार के मामले में वो सुनवाई का सामना करेंगी। ईरान के कट्टरपंथी नेता मोहम्मद बगैर गलीवफ ने इस हफ्ते होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। वो तेहरान के मेयर हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर इब्राहिम रईसी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ आप bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। पाकिस्तान में पकड़े गए कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में सुनवाई जारी है। सबसे पहले भारत की ओर से पैरवी की वरिष्ठ कानूनविद हरीश सालवे ने, उन्होंने अदालत से कहा कि जाधव को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और वियना संधि का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की ओर से वकील सैयद फराज हुसैन जैदी अभी पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने अब तक भारत की ओर से लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। हमारे साथी जुबैर अहमद स्टूडियो में है। जुबैर, बता पाएंगे अभी तक क्या हुआ है?
हम पिछले 4-5 घंटों से हमने नज़र रखी हुई है, आप भी गाहे बगाहे नज़र रखे हुए थे इसमें। और पहले तो भारत ने अपना पक्ष रखा और जैसा कि आपने बताया कि ये जो प्रसिद्ध वकील हरीश सालवे हैं, उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त तरीके से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कैसे वियना कन्वेंशन की ख़िलाफ़ वर्जी पाकिस्तान ने की है और जाधव को जो पकड़ा है उसमें कोई सबूत नहीं है, बगैर सबूत के ही, और ये कोई अदालत ने नहीं बल्कि सैन्य अदालत ने, ये जो मिलिट्री कोर्ट है उसने जो है फैसला सुना दिया है। उनको मौका भी नहीं मिला कि अपना पक्ष रख सके। उन्होंने ये भी बताया कि कौंसुलर सर्विस जो भारत ने 16 बार पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी वो भी नहीं माना पाकिस्तान ने अब तक, और फिर ये कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसका ये वायलेशन है, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की अदालत से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि पाकिस्तान को वो बताए कि ये चीज़ें करें।
The government of Islamic Republic of Pakistan take all measures.
हरीश सालवे कह रहे थे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार को तमाम कदम वो उठाने चाहिए जो इस बात की ज़मानत दे सके कि कुलभूषण यादव को मौत की सज़ा जो दी गई है वो रोका जा सके फौरी तौर पर। पाकिस्तान की सरकार इस अदालत को बताए कि उसने ये कदम उठाए हैं और जो भारत और जो यादव के जो बेसिक राइट्स हैं उसका जो उल्लंघन हो रहा है उसको पाकिस्तान ने उस पर रोकथाम करने की जो कोशिश की है वो अदालत को कर बताए। तो ये सालवे जब अपना पक्ष रख रहे थे तो उनका जो पॉइस था, उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो सबसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो 11 जजों का बेंच है उसको बहुत ही कन्विंसिंग अंदाज में अपना पक्ष रखने में काम
जी। आपने भारत का पक्ष बताया, पाकिस्तान की ओर से शुरुआती पक्ष रखा था मुअज्जम अहमद खान ने, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था।
As the court can see, the passport bears a Muslim name, which plainly is not the name of
Muhammad Muazzam Ahmed Khan. जैसे जब ये बोल रहे थे तो एक स्क्रीन पर पासपोर्ट एक दिख रहा था जो कुलभूषण जाधव का, उनका कहना था है, और वो उसमें मुस्लिम नाम था। तो उनका आरोप था कि कुलभूषण जाधव ईरान से एक गलत नाम से, फर्जी नाम से पाकिस्तान में घुसे। हमारे साथ बीबीसी उर्दू सर्विस के सलाउद्दीन जैन भी मौजूद हैं। सलाउद्दीन, क्या कहा गया पाकिस्तान की तरफ से?
बुनियादी तौर पे बड़ा एग्रेसिव टोन था जो बात कर रहे थे, उन्होंने भी वैसे शुरुआत की और जो वकीलों का होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन जो आम बात थी वो जो बुनियादी मेन बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो भारत की तरफ से अर्जी आई है कि अदालत इस हस्तक्षेप करे, तो उन्होंने कहा कि उसको खारिज कर देना चाहिए। और उन्होंने दलील के तौर पर जो बात थी कि काउंसलर एक्सेस नहीं दी, तो वो ये कह रहे थे बार बार कि जब ये बात इंडिया को बताई गई और पासपोर्ट बताया गया कि आप बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो बार बार ये भी कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक संधि है, एक एग्रीमेंट है, उसमें ये बातें हैं कि हम जब भी कोई पकड़ा जाएगा, कोई मुजरिम होगा कोई इस तरह का, तो हम काउंसलर एक्सेस देंगे। लेकिन उसी के आखिर में उन्होंने कहा कि एक लाइन दर्ज है और जो इस पर साफ लिखा हुआ है कि ये अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, तो ये उन कंट्रीज़ के ऊपर है कि वो खुद फैसला करें कि वो देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये बात उसी में दर्ज है, वो कह रहे थे, जिसमें ये दर्ज है कि हम काउंसलर एक्सेस देंगे। और उन्होंने कहा कि जो है जो ये मामला, मतलब उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो मामला है पूरा ये नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की है, उसका दाखिली मामला है और इसमें किसी थर्ड पार्टी को जो है, और इसीलिए किसी को नहीं
जी। दो बातें और कहीं मुझे ध्यान आ रहा है, एक कहा कि कहा गया कि भारत की तरफ से राजनीति की जा रही, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, और ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि हमने सबूत दिए हैं लेकिन कई नाम दिए गए लेकिन भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स या उसका नहीं आया।
ये भी कि मीडिया जो है उसका इस्तेमाल भारत कर रही है।
जुबैर, आपकी बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जो वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर?
हाँ, तो हमने बात की यतीश बेगूर नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना था कि मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला अगर आया भारत के पक्ष में तो क्या पाकिस्तान बाध्य होगा, तो उनका ये कहना था।
हम उसको डोमेस्टिक कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट की ऑर्डर की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि ऑल्दो वो ऑर्डर है और ऑल्दो दैट इज द लॉ, एनफोर्समेंट के लिए देयर इज नो इंटरनेशनल से पुलिस फोर्स या देयर इज नो इंटरनेशनल फोर्स स्टैंडिंग बाय कि उसको एनफोर्स करे। एनफोर्समेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल पहले। सो इसीलिए मैंने बोला कि इसकी प्राइमरी इफेक्ट जो है कि एक डेफिनेटिव वर्ल्ड ओपिनियन इस इश्यू और इस डिस्प्यूट पे सेट हो जाएगी।
तो यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है विनीत कि ये जो इंटरिम मामला चल रहा है कि भारत चाहता है कि फौरी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई फैसला जल्दी से सुना दे। भारत का ये है अभी एम कि वो जो फांसी की सज़ा होने वाली है वो रोक दी जाए किसी तरह से, उसके बाद एक प्रॉपर अदालत में ये हियरिंग होगी, उसके बाद जो भी फैसला आएगा अदालत का उसको दोनों कंट्री बाध्य होंगे कि उस पर अमल करें। तो यही चीज़ वो जो यतीश बेगूर भी समझा रहे थे हमें।
So, अभी जो अर्जेंट हियरिंग जो कोर्ट ने सेट की है प्रोविजनल मेजर्स की हियरिंग है, जिसका मतलब ये हमारी इंटरिम ऑर्डर की हियरिंग की इक्विवेलेंट में मानी जा सकती है इंटरनेशनल लेवल पे।
समझ गया।
सो इंडिया अभी प्रोविजनल मेजर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब तक ये केस की हियरिंग खत्म ना हो और जब तक जजमेंट ना आए उस डेथ सेंटेंस की एग्जीक्यूशन ना की जाए।
अब कुछ लोग विनीत ये भी इच्छुक हैं जानने के लिए कि ये फैसला कब आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो मैंने उनसे बात की वकील साहब से, तो उनका कहना था कि देखिए ये अब तक जो परंपरा रही है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया अमेरिका और जर्मनी के बीच एक मामला हुआ था कि उसमें 24 घंटे के अंदर भी फैसला आ गया, आरजी फैसला जो इंटरिम डिसीजन है, तो उनका भी मानना है कि शायद ये 24 घंटे के अंदर इसमें कुछ फैसला आ सके।
बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर आपका।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के रोहतक में एक 23 साल की महिला को अगवा कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना की तुलना दिल्ली सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई निर्भया से की जा रही है। रोहतक से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, पूरा वाकया क्या है और जो स्थिति है अभी, ग्राउंड सिचुएशन क्या है?
विनीत, पूरा इलाका जो है वो सख्ते में है और 9 मई को जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा के सोनीपत में इस युवती का किडनैप हुआ, उसके करीब 2 दिन बाद इस युवती की लाश सोनीपत से सटे रोहतक जिले में एक नेशनल हाईवे के पास पड़ी हुई मिली और पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों के मुताबिक और फोरेंसिक जांचकर्ताओं के मुताबिक जो उसका शव मिला उसको काफी हद तक जो जानवर है वो खाने की कोशिश कर रहे थे, करीब 15% खा चुके थे। बहुत ही दर्दनाक और बर्बरतापूर्ण तरीके से इस स्त्री की हत्या की गई है। हमारी बात हुई है फोरेंसिक मामलों के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जो सर में तमाम हड्डियां होती हैं स्कल में, उसमें से अधिकांश चकनाचूर हो गई है और जिस बात से प्रदेश सरकार, प्रशासन और हर कोई सख्ते में है वो ये भी है कि ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब अभी कुछ दिन पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्भया मामले में लोगों को जो दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो अपहोल्ड किया था, उनकी मौत की सजा बरकरार रखी थी और इस तरह की आपका वाकया कम से कम पुलिस और प्रशासन अभी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि दरअसल ये हो कैसे गया कि 2 दिन तक 1.5 दिन तक एक महिला गायब होती है, उसके बाद उसका शव एक दूसरे जिले में मिलता है, पड़ोसी जिले में मिलता है और इतनी बुरी हालत में मिलता है।
नितिन, आप उस घटना का बयान कर रहे हैं तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इतनी निर्ममता और इतनी क्रूरता से ये पूरी इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो इस घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका क्या कहना है?
विनीत, बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, बहुत ज्यादा गुस्सा है ग्राउंड लेवल पर, गांव में, दोनों जिलों में हमारी लोगों से बात हो रही है। अभी अभी हम सोनीपत से वापस रोहतक लौटे हैं, जो 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 युवती थी उसकी माँ से, उसके पिता से मिलकर वापस लौटे हैं। उसके आसपास पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसको इस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, 5 से 10-15 मिनट शायद लगे होंगे उसको अपनी जान गंवाने में, तो लोगों का ये मानना है, लोगों की ये मांग है कि जो भी इसमें दोषी करार पाया जाए उनको मैक्सिमम सजा हुई दी जाए, फांसी की सजा की लोग गुहार लगा रहे हैं। तमाम राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं लड़की के परिवार के साथ सांत्वना देने, और हमारी जिन परिवारजनों से, पुलिस से, प्रशासन से, फोरेंसिक एक्सपर्ट से जो कुछ बात हुई है, हमारी पूरी कोशिश होगी सुने के नमस्कार भारत में हम अपने श्रोताओं को वो सारी बातें सुना सके।
बहुत बहुत शुक्रिया रोहतक से नितिन श्रीवास्तव आपका। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें जारी हैं। इंटरनेट पर प्रतिबंध के बावजूद विवादित वीडियो का फैलना जारी है। 4 दिनों से लापता एक लड़के के वीडियो मिलने से स्थिति और गंभीर हुई है। इस वीडियो में लड़का हथियारों से लैस है और वो चरमपंथियों के साथ मिलने की घोषणा कर रहा है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
स्कूलों और कॉलेजों के बाहर एक महीने से अब यही सब हो रहा है। आज भी श्रीनगर के श्री प्रताप कॉलेज के छात्रों ने विरोध मार्च किया तो पुलिस ने इन्हें रोका, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। इस बीच दक्षिणी जिला छोपियान में 4 दिन के बंद के बाद आज आम जनजीवन सामान्य हो गया। ये बंद 26 वर्षीय स्थानीय युवा जुबैर तुरे के अचानक लापता हो जाने के विरोध में किया गया था, लेकिन कल रात जब जुबैर ने यूट्यूब पर सशस्त्र होकर चरमपंथियों के साथ मिल जाने की घोषणा की तो जिले में स्थिति बहाल हो गई। 5 मिनट की इस वीडियो में जुबैर ने विस्तार के साथ बताया कि 3 वर्ष से पुलिस ने इनके साथ क्या क्या ज्यादती की और अंत था उन्होंने जंगल की राह ली। इस प्रकार की ये पहली घटना नहीं है। दक्षिणी कश्मीर के दर्जनों युवा ऐसे हैं जिन्होंने ऊंची शिक्षा पाने के बाद बंदूक थाम ली है। यूनिवर्सिटी कैंपसों में छात्रों और छात्राओं के बीच हो रही बातचीत का आजकल ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अधिकतम छात्रों का मानना है कि युवाओं का जीवन लगातार डर के बीच गुजरता है और पुलिस इन्हें सिर्फ नारे देने पर जेल भेज देती है और बाद में इनके पास बंदूक थामने के बगैर कोई विकल्प नहीं रहता।
जब आप एक लड़की को प्रेशराइज कर रहे हो, अपनी सारी स्टेट की इंस्टीट्यूशंस उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसको कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है जहाँ पे वो अपने आप को डिस्कस कर सके, तो जाहिर सी बात है जब बात करने से बात नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है कि वो लोग दूसरे तरीके देखते हैं।
स्टोन पैरेटर्स को आप जेल में लेते हो और फिर आप उन पे मतलब जो जो नहीं करना चाहिए आप वो भी करते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि बिकॉज ऑफ दैट कि वो लोग मिलिटेंसी की ओर जाते हैं।
ताम को छात्रों का कहना है कि एक ताकतवर सेना के विरुद्ध चंद लोगों का बंदूक उठाना एक असंगत युद्ध है जिससे नौजवान पीढ़ी खत्म हो रही है।
मुझे लगता है कि आर्म्स लेना या हथियार उठाना ये कोई सेंसिबल बात नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि 1947 से पहले क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट असल में है क्या, असल में कौन ये गेम खेल रहे, तो उनको इस सब का कुछ पता नहीं है। अगर वो किसी कोई और तरीका देख लेते कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का, शायद उससे मौत कम हो जाती।
हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि चलो कुछ टाइम के लिए हम एज अ प्रेशर टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं इनको बुलाने के लिए ताकि ये मजबूर हो जाएं टेबल पे आने के लिए, ताकि ये मजबूर हो जाएं हमारे साथ बात करने के लिए। खैर अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है, एज अ प्रेशर टैक्टिक हम तो इसमें फेल ही हुए हैं।
एक महीने से जारी छात्र विद्रोह के बारे में अलगाववादियों ने भी सतर्क शब्दों में चिंता व्यक्त की है, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर एक बार युवाओं के माता पिता और अध्यापकों से अपील की कि वो युवाओं के साथ बातचीत करके इन्हें हिंसा से दूर रहने की सीख दें।
मैं तो कभी कह सकती हूँ शायद हमें नजर लगी है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारी इस खूबसूरत वादी को नजर लगी है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, जो बड़े मसले हैं वो बड़े लोग हल करेंगे, बच्चों का काम है पढ़ाई करना, लिखाई करना और खेलना और कूदना और हंसना और मुस्कुराना।
गौरतलब है अप्रैल में पार्लियामेंट की 2 खाली सीटों के लिए उपचुनाव के पहले ही चरण के दिन हिंसा भड़क उठी थी। वोटिंग सिर्फ 7% हुई और पहले ही चरण के दौरान 8 प्रदर्शनकारी मारे गए। दूसरे चरण का उपचुनाव स्थगित किया गया है, लेकिन एक कॉलेज पर फोर्सेज के छापे और छात्रों की मारपीट के विरोध में अब कॉलेजों और स्कूलों में अशांति है। उपचुनाव के दौरान भारतीय सेना के मेजर लितोल गोगोई ने बड़गाम के फारूक डार नामी नौजवान को जीप के साथ बांधकर पथराव के विरुद्ध मानव आवरण के तौर इस्तेमाल किया था। सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने मेजर गोगोई को निर्दोष पाकर उनकी कुशाग्रता की तारीफ की है। इस निर्णय से भी युवाओं में गुस्सा बढ़ गया है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी नेता कुंदन पाहन को 15 लाख रुपए बतौर पुनर्वास राशि दिए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव ए सिब्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता शादाब इकबाल ने उच्च न्यायालय का ध्यान अखबारों में कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण से संबंध रखने वाली रिपोर्टों को दिखाया और बताया कि जिस तरह से नकद राशि और दूसरी सहायता सरकार कुंदन पाहन को दे रही है उतनी एक स्वतंत्रता सेनानी को भी नहीं मिलती और न ही नक्सली हमले में मारे गए जवानों को। दिल्ली से सलमान रावी।
कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण के मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण को पीआईएल के रूप में सुनने की सहमति दे दी है। आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस द्वारा बड़ी धनराशि और दूसरी सुविधाएं दिए जाने के मामले में इंटरवीनर बने वकील अराफात हुसैन ने बीबीसी से बात करते हुए आत्मसमर्पण की पूरी कहानी पर ही हैरानी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा समाचार पत्रों में आत्मसमर्पण से संबंधित समाचार पर न्यायालय का ध्यान खींचा गया
और उस पर चीफ जस्टिस को ये बताया गया कि जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका 15 लाख रुपया उसको जो दिया गया है मुआवजा के रूप में, इनाम के रूप में, ये बिल्कुल गलत है और उसकी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने दोनों हमारे जो एडवोकेट थे उन लोगों से मेंशन स्लिप फाइल करवाया और मेमो लिया है, उस पे अभी पीआईएल नंबर लेकर के फिर उस पे भी जो कोर्ट की आगे कार्रवाई होगी।
नक्सली नेता कुंदन पाहन पर झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का भी आरोप है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के कैश वैन से 5 करोड़ रुपए की लूट और गुप्तचर शाखा के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदिवर के बीच सड़क पर गला काटकर हत्या करने का आरोप भी कुंदन पाहन पर है। कुल मिलाकर कुंदन पाहन के खिलाफ 128 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमेश सिंह मुंडा के पुत्र विकास मुंडा आजसू पार्टी के विधायक हैं और कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण और पुलिस द्वारा दिए गए पैकेज से वो काफी नाराज हैं।
जिसने कराया ना वो किसी भी सूरत में न्याय संगत तो नहीं है और तर्क संगत भी नहीं है, दोनों चीजें। दूसरा है कि ये कुंदन पाहन एक नंबर का अपराधी है, इसको अपराधी के तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि एक अतिथि बना करके इसका महिमा मंडन करने। तो ये तो तमाम उन लोग जो शहीद हुए हैं इनके साथ लड़ाई में, उनका मजाक है, सादत का मजाक है। मंच सजाना चाहिए और भाषण दिलवाना चाहिए। हाँ भाषण दिलवाए, हाँ पूरा तो इनके मनपसंद खाना मिल रहा है, ये यही सब चीजों का तो विरोध है ना।
फिलहाल विकास रांची में इसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। वहीं रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलदीप द्विवेदी कहते हैं कि आत्मसमर्पण की नीति में पुनर्वास इसलिए रखा गया है ताकि भटककर माओवादियों के साथ शामिल हुए लोग मुख्य धारा में वापस लौट आए।
कमेटी होती है उपायुक्त की अध्यक्षता में, वो रिकमेंडेशंस भेजती है और फिर वो जो लाभ होते हैं वो दिए जाते हैं, रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सम टेक्निकल सपोर्ट, वन द लाइवलीहुड और समथिंग लाइक दैट। इन जनरल द पब्लिक थिंक्स दैट वंस अ पर्सन सरेंडर्स द legal cases and all those things are waived off, nothing of that sort happens. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई legal प्रक्रिया बाधित होती है या cases waive कर लिए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो अपना कानून का काम है वो अपना निरंतर चलता रहता है 2-3 वर्षों में लगातार। इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। पुलिस बहुत मजबूती के साथ ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में इन पर दबाव बनाने में सफल रही है।
पुलिस का दावा है कि कुंदन पाहन अभी भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का वरीय कमांडर है, मगर जानकार कहते हैं कि आरोपों से घिरने के बाद उसे वर्ष 2014 में संगठन से बाहर कर दिया गया था। हालांकि माओवादियों ने अभी तक इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की है। कुंदन पाहन का असली नाम बीर सिंह पाहन है, जो राज्य के खूंटी जिले के अड़की प्रखंड स्थित बारीगढ़ा गाँव का रहने वाला है। पारिवारिक जमीन पर आपसी कलह के बाद उसने हथियार उठा लिए थे। उसके 2 भाइयों ने भी माओवादियों से हाथ मिला लिया। हालांकि उसके एक भाई दिम्बा पाहन ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि दूसरे भाई श्याम पाहन को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। अब रांची की सिविल सोसाइटी के लोग उच्च न्यायालय से कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण से जुड़े सभी पहलुओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और अब श्रोताओं की चिट्ठियों का जवाब दे रहे हैं मुकेश शर्मा और वंदना।
आपकी राय आज के इस कार्यक्रम में नमस्कार स्वीकार कीजिए मेरा वंदना का, और मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा
जी। मुकेश जी भी आज कार्यक्रम में शामिल हैं, बहुत दिनों बाद। जी काफी समय हो गया, तो शुरू करें सिलसिला।
जरूर।
ये पहला पत्र है हमारे पास रामचंद्र यादव जी का। इन्होंने लिखा है गांव भगवाड़ी खुर्द, जिला अलवर, राजस्थान से, और लिख रहे हैं कि 22 साल से नियमित सुन रहा हूँ, पत्र सिर्फ दो बार लिखा है, ये तीसरा पत्र है।
22 साल से श्रोता हैं
जी, और बोल रहे हैं कि आपकी तटस्थता और निरपेक्षता का मैं हमेशा ही कायल रहा हूँ, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय विशेष की खबरें ज्यादा दिखाते हैं। इनका कहना है कि बहुत सी घटनाएं भारत में होती रहती हैं और आप उन पे भी अपनी बात रख सकते हैं। मुकेश, अगर जोड़ दूं तो एक और ईमेल है, राजेश हैं, इनका ये कहना है कि ये भी बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं और इनकी शिकायत ये है कि आपके यहाँ एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट यानी कि धुर वामपंथी विचारधारा जो है वो हावी रहती है, तो ये दो बहुत अलग अलग तरह की
हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही पत्र एक तरह से ये भी दिखा देते हैं कि संतुलन रहता है। कई बार ये होता है कि एक ही तरह की खबरें शायद उस पर नज़र ज़्यादा रहती है तो वो रजिस्टर भी ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है। हमारी हमेशा से, और ये मैंने इससे पहले भी कार्यक्रमों में कई बार कहा है, बीबीसी अपनी नीतियों के तहत हमेशा ही तटस्थ और निरपेक्ष होकर खबरें सामने रखती है बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के।
जी, तो अगला पोस्ट कार्ड ले लेते हैं, ये है पंडित विनोद ओझा साहब का, ये अमेठी ऐसा लग रहा है, अमेठी उत्तर प्रदेश, और ये लिखते हैं कि जो 30 मिनट के प्रसारण में पिछले 25 सालों से रोचकता बनी हुई है,
तो जाहिर सी बात है, बात है।
इन्होंने कहा बहुत बहुत बधाई, और इन्होंने जिक्र किया एडोल्फ हिटलर पर जो रेहान फजल की विवेचना थी वो इन्हें काफ़ी पसंद आई और बहुत सारी नई जानकारियां मिली, और एडोल्फ हिटलर पर ही जो तमाम दूसरे हमारे श्रोता हैं उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी है कि उन्हें ये पूरी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी लगी।
जी, रेहान जी की खासियत है एक तरह से जिस विषय पे भी वो विवेचना प्रस्तुत करते हैं वो बिल्कुल गहन एक तरह से शोध करके जानकारी जुटा के रखते हैं, और वो श्रोताओं को हमेशा ही अच्छी लगती है। रेहान जी तक ये तारीफ हम जरूर पहुंचा देंगे।
जी, अगला जो पोस्ट कार्ड है वो है SN दुबे साहब का, कहते हैं कि बार बार आप आग्रह करते हैं कि पत्र लिखें और पत्र आ भी जाते हैं, लेकिन फिर आप सबके नाम तो पढ़ नहीं पाते, कई बार बस नाम बोल के निकल जाते हैं तो क्या कुछ इसका कोई इलाज है? वैसे इन्होंने ये भी कहा कि अब प्रसारण साफ सुनाई देने लगा है।
चलिए, तो दुबे जी ने ये बताया कि प्रसारण साफ होने लगा है, और देखिए उनका पत्र भी शामिल हो गया, और मुझे पूरा यकीन है कि इस साफ प्रसारण के बीच में अपनी चिट्ठी भी बहुत ही साफ ढंग से उनको सुनाई पड़ेगी।
जी, और कुछ ईमेल भी ले लेते हैं। बहुत सारे ईमेल आए हैं इंडिया बोल कार्यक्रम पर, जो कि था ट्रिपल तलाक यानी जो 3 तलाक का मुद्दा है, इसमें दोनों तरह के हैं, कुछ लोगों को पसंद आया है, कुछ लोगों ने इसकी थोड़ी सी आलोचना भी की है। तो पहले चिट्ठी लेते हैं अनिल शुक्ला साहब की, ये कहते हैं कि इस बार का जो अंक था वो निराशाजनक था, क्योंकि इन्होंने जो गेस्ट थी सईदा हमीद उनका इन्होंने कहा कि उनका जो रुख था वो बहुत ही हैरानी वाला था, और आपको कोई ऐसी महिला को बुलाना चाहिए था जो कि शायद इस तरह की मामलों में जो प्रभावित हुई हूँ। तो इनका ये कहना था कि कुल मिला के इनको प्रस्तुति बहुत अच्छी नहीं लगी, और ऐसा लग रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है तो आप शायद जानबूझ के इस मुद्दे को उछाल रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है इसलिए उछाल नहीं रहे थे, पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये इस बारे में सुनवाई शुरू हुई है इसलिए ये जिम्मेदारी एक संस्थान के तौर पे पत्रकारिता में हमारी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर चर्चा हो, और सैयदा हमीद एक अपनी बात उसमें रख रही थी, पर कार्यक्रम में हर तरह के श्रोता थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इसके ऊपर लगातार चर्चा जारी है और आगे चलती भी रहेगी।
तो मुकेश, आज समय इतना ही है, और जाते जाते अपने श्रोताओं को अगर पता बता दें।
जी, आपकी राय बीबीसी हिंदी, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
ईमेल करना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk। तो अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई हो रही है। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रिपब्लिकन पार्टी के एडवार फिलिप को प्रधानमंत्री नामित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। आइवरी कोस्ट में सरकार समर्थित सैनिकों और विद्रोही सैनिकों के बीच संघर्ष की खबरें हैं। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 150 देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमले का असर कम हो गया है। बीबीसी समाचार।
समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में।